हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गौर निताय के आश्रित श्री पंचशील के भक्तवृंद और दामोदर देश से हंस गोकुल प्रभु जी के जो सत्संगी हैं, मनीष जी को रोज हम देखते हैं और सविता आदि, और फेसबुक के जो हमारे भाग्यशाली प्रतिदिन ये सायंकाल के शाम के सत्संग में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो उद्धव के माध्यम से हम सबके लिए शिक्षादायक है, जो भगवान श्री दत्तात्रेय अवधूत के रूप में महाराज यदु को दिया है, उसमें आज पांच तत्वों के द्वारा जो शिक्षा है वो आज पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचेगी, और फिर अन्य चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली और सूर्य से क्या शिक्षा मिली इसका वर्णन आगे चलेगा। तो कल अग्नि के शिक्षा का वर्णन हम कर रहे थे, तीन श्लोक तो साथ में है और एक श्लोक चंद्रमा की शिक्षा के बाद है, चार श्लोकों में अग्नि से जो शिक्षा अवधूत दत्तात्रेय ने अपनी बुद्धि से, अग्नि के व्यवहार से, अग्नि से, अग्नि के वृत्ति से जो अनुभव किया अपनी बुद्धि से, और जिसका वर्णन करके यदु महाराज को बता रहे हैं कि साधु संत महात्मा को ज्ञान से और तपस्या से प्रदीपित होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए, और इन दो के बाद अग्नि का जो दूसरा गुण लिखा था दुर्दर्श, दुर्दर्श का मतलब कोई भी लुभावने वाला आँखों का दृश्य, कानों का शब्द, त्वचा का स्पर्श, जीभा का स्वाद, नासिका का सुगंध उसको अपने भक्ति के पथ से, कृष्ण भावना की स्थिति से विचलित नहीं कर सकता है, दुर्दर्श उसको अपने पथ से भटकाना संभव नहीं है। और उदर भाषी का मतलब है केवल आवश्यकता के अनुसार ही जीवन में ग्रहण करता है, अधिक संग्रह नहीं करता, और सर्वभक्षी है। फिर सर्वभक्षी का मतलब महात्मा है, भ्रमण करते रहते हैं, कभी एक जगह रहते नहीं है, तो जहाँ भी शुद्ध सात्विक अन्न मिलता है, कभी रूखा मिलता है, कभी सूखा मिलता है, कभी तो बहुत बड़ा कहीं बड़ा भोज मिलता है, दही दूध मक्खन सब कुछ मिलता है, और कभी सूखे चने चबाने को मिलते हैं, तो सब परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखे, और जहाँ से भी मिले उसके अन्न को लेने के बाद भी उससे प्रभावित, उसके कर्मों से प्रभावित नहीं होता, ये पहले श्लोक में हमने कल इसका अनुभूति की थी। और दूसरे श्लोक में कल हमने देखा था के चिन्ना क्वचन स्पष्टता, कभी कभी साधु अपने आप को लुप्त रखता है, क्योंकि लोग ज्यादा पूजा पाठ और प्रतिष्ठा करें और तो उसकी वजह से अपने भक्ति में हानि न हो, तो आग की तरह कभी तो राख के नीचे छुपा हुआ रहता है और कभी स्पष्ट हो जाता है, जहाँ उनको सेवा की आवश्यकता है या दूसरों को भगवत भक्ति के रास्ते में लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भक्तों के बीच में प्रकट भी हो जाता है, अब भक्तों के बीच में अपने आप को ढका हुआ रखता है। और फिर उपास्य श्री है इच्छतम, उपास्य श्री इच्छतम भुंकते सर्वत्र दात्रिणाम, जो भी अपने श्रेय के लिए, अपने भले के लिए, अपने आत्यंतिक श्रेय का मतलब होता है धर्म के लिए, नीति के लिए, सद्मार्ग के ऊपर चलने के लिए जो भी उनकी पूजा करता है उपास्य, उसकी वो सारी पूजा ग्रहण करते हैं, उनसे वो पूजा ले लेते हैं, और फिर उनका दहन प्राग उत्तरम अशुभम, जो उनके पहले के और भविष्य में होने वाले अशुभ है उन सबको जला के समाप्त कर देते हैं। जैसे अग्नि में कोई पूजा यज्ञ के अंदर आहुति डाल के स्वर्ग आदि लोगों में जाना चाहे, या आग जला के घर में भोजन बनाना चाहे, या सर्दी में आग के ऊपर सर्दी में आग से अपने आप को तपाना चाहे, तो अग्नि उसका दुख दूर कर देती है। इस प्रकार से साधु जो है, जो भी लोग उनको मान सम्मान देते हैं, उस मान सम्मान को ग्रहण करने से उनके पापों का नाश कर देता है। और उस मान जो मान सम्मान लोग देते हैं, उससे उसको हजम करने की उसमें सामर्थ्य होती है, उससे उसके अंदर उसका अहंकार नहीं आता है, और वो दूसरों का अशुभ जो है उसको नाश कर देता है, दहन कर देता है। और फिर ये श्लोक हम 47वां पढ़ा था, स्वमाया सृष्टम इदम सदसल लक्षणम विभो विभू, यहाँ कहते हैं भगवान को, भगवान है विभू है, उस विभू ने, उस भगवान ने अपनी माया से सृष्टि की है ये संसार की। सद और असद लक्षणम, सद लक्षण और असद लक्षण का मतलब है, ये सद असद शब्द भगवद गीता में आता है कि सद असद योनिषु कर्म से, कर्म के कारण तीनों गुणों के, गुणों के प्रभाव से, ये भगवद गीता का तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि सद असद योनि जन्म सु, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से जीव को सद असद योनि में, सद योनि का मतलब सतोगुण के प्रभाव से देवता आदि ऋषि मुनियों की योनि में, अथवा रजोगुण के प्रभाव से प्राय इस धरती के ऊपर मानव शरीर के रूप में, अथवा तमोगुण के प्रभाव से आलसी मानव के अथवा पक्षी पशु के जून में भी जाए, तो सद असद योनि जन्म सु प्रकृति के, प्रकृति क्रियामाणानी गुण ही सर्वा कर्माणी सर्वस, ये भी एक श्लोक है। और दूसरा ये जो श्लोक हम कह रहे हैं, ये तीनों गुणों के प्रभाव से जीव ऊंच या नीच जूनी में जाता है। तो यहाँ सतसद लक्षणम, तो सद योनि का लक्षण है, देवता की योनि का लक्षण, ऋषि की योनि का लक्षण, और असद योनि में नीच योनियों का लक्षण, तामसिक लक्षण, असुरी लक्षण। विभु ये भगवान की, ये भगवान के नज़रदारी में होता है, भगवान की अध्यक्षता में होता है। और भगवान इतना भी नहीं है केवल इनकी सृष्टि करते हैं, प्रवेष्ट इयते तत्तत, इन सब के अंदर भगवान प्रवेश भी करते हैं, परमात्मा के रूप में इन सब में प्रवेश करते हैं। तत्तत् स्वरूपो अग्निर इवादसी, तत्तत् स्वरूपो अग्निर एव ईधसी, ईधसी का मतलब ईंधन। अब ईंधन की यहाँ, ईंधन लकड़ी में होता है, लकड़ी गोल है, चौकोर है, लंबी है, छोटी है, टुकड़ा है, पूरा है, इस सब अग्नि के अंदर, सब लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, तो उसके रूप, उसका रूप कैसा भी हो लेकिन उसके अंदर अग्नि होती है। ऐसे संसार में सृष्टि में कुछ भी दिख रहा है, छोटा मोटा दिख रहा है, स्त्री पुरुष दिख रहा है, और काला गोरा दिख रहा है, ये जो कुछ भी दिख रहा है, इस सारी विविधता के अंदर एक रस परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि उस भगवान की अनुभूति कैसे की जाए, तो आचार्य गण कहते हैं जैसे लकड़ी के मंथन करने से उसके अंदर से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे जब साधन करेगा कोई हरि भक्ति का, श्रवण कीर्तन का साधन किया जाए अगर, तो उस मंथन से, दूसरा उदाहरण भी इसके साथ दिया है आचार्य गुरुवरों ने, जैसे गाय के अंदर दूध होता है लेकिन उसको किसी को निकालना आएगा तो उसमें से निकाल सकता है, खेत के अंदर अनाज होता है लेकिन कोई हल जोतेगा बोएगा तो निकलेगा, ऐसे दूध के अंदर मक्खन होता है लेकिन उसको जब मंथन करेंगे, पहले दही गर्म करेंगे, दही जमाएंगे, मंथन करेंगे, तब उसके अंदर से मक्खन निकलता है। ऐसे ही संसार के अंदर सर्वत्र भगवान सभी जीवों में समाया हुआ है एक रस, लेकिन उसको दर्शन करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमको साधन करना पड़ेगा। मंथन का मतलब होता है साधन। पहले जमाने में लकड़ी से आग भी मंथन से निकाली जाती थी, जो ब्रह्मचारी है वो मंथन करके लकड़ी से आग निकालते थे, तो एक लकड़ी को नीचे रख के दूसरी उसके ऊपर रख के उसमें रस्सी बांध के और दो ब्रह्मचारी एक उधर खींचता था, एक उधर खींचता था, तो उसके अंदर से चिंगारी निकलती थी, तो फिर छोटा सा और कोई घास जलाकर फिर उसमें से अग्नि उत्पन्न, और वैसे भी यज्ञ इस प्रकार से ही अग्नि उत्पन्न होती है, उससे यज्ञ हुआ करते थे। ये अरणि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास होती थी। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो साधन करते हैं, वो अपने साधन के द्वारा भगवान को आपको प्रकट कर सकते हैं। और यहाँ तत्त्व रूप का भी एक भाव लिखा है कि जिसका जिस भगवान के विशेष रूप में आसक्ति है, इष्ट के माध्यम से उसी का, जैसे वो भक्त है, रामचंद्र का भक्त है, नरसिंह देव का भक्त है, लक्ष्मी नारायण का भक्त है, राधा श्याम का भक्त है, तो उसी रूप में भगवान उसके है, उसको उसको दर्शन देते हैं। तत्त्व स्वरूपो, उसी स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं, एक भाव ये लिखा है। तो लकड़ी चाहे छोटी हो, मोटी हो, गोल हो, चौरस हो, लेकिन सबके अंदर आग होती है, ऐसे सारे जीवों के अंदर भगवान प्रविष्ट है, सृष्टि करने के बाद प्रविष्ट है। पंडिता सम दर्शन है वाला श्लोक को भी याद करके भगवद्गीता से देखना चाहिए कि जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो गौ ब्राह्मण हस्तनी गौ सुनी चाय वसो पाके चा पंडिता सम दर्शन। पंडित जो है एक ब्राह्मण में, एक गाय में, कुत्ते में, कुत्ते खाने वाले में, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। तो ये अनुभूति इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये अनुभूति अगर की जाए तो बहुत भाग्य की बात है। तो भगवान सर्वत सबके हृदय में बैठे हुए हैं, फिर भी लोग उसको भूलकर अपने ही भोग के कामों में लगे हुए हैं और अपने आप को ही सब कुछ संसार में मानने की मूर्खता कर रहे हैं, जब सब कुछ भगवान के ही प्रेरणा से हो रहा है। अब हम आज आगे ये चंद्रमा से शिक्षा ले रहे हैं, इस श्लोक को शुरू करते हैं। विसर्गाद्यः स्मशानन्ता भावा देहस्य न आत्मनः कलानामिव चन्द्रस्य काले नाव्यक्त वर्तमना। विसर्ग आप अगर जानते हैं तो विसर्ग और विसर्ग ये सृष्टि के विषय में दो शब्द हैं। संसार में जो भगवान से सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। सामान्य शब्दों में सर्ग का ये विसर्ग का अर्थ है जन्म, सृष्टि। आद्य शमशान, आद्य का मतलब है जन्म से लेकर, कौन सी जूनी में जन्म होता है, उस जिस भी जूनी में जन्म हो, मानव को, हम तो मानव को लें चलो अपने अनुभव के लिए, चाहे वो कीट पतंग हो, पशु पक्षी हो, लेकिन जैसे ही वो पहले तो जीव आत्मा इस धरती के ऊपर अन्न के अंदर प्रवेश करता है, अन्न से जो मानव खाता है उसके रक्त में जाता है, रक्त से उसके वीरज में जाता है, और फिर उसको किसी माँ के गर्भ में वो जो है वो उधर एक मिलने के बाद 9 महीने उस गर्भ में रहता है, वहाँ से लेकर उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, आत्मा नहीं जो शरीर है उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, आद्य का मतलब है जन्म से लेकर शमशान अंत। शमशान ये शब्द है सीधा सा शमशान, शमशान, शमशान का मतलब जहाँ शरीर का दहन किया जाता है मरने के बाद, वहाँ तक। तो माँ के गर्भ में आने से लेकर और मरने तक उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा हो, बच्चा पहले कुमार होता है, फिर पोंगल होता है, फिर कुमार होता है, फिर कुमार के बाद यौवन होता है, यौवन के बाद जो है जवान होता है, फिर थोड़ा पक्की अवस्था होती है, फिर वृद्ध होता है। इस शरीर के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या है, भावा देहस्य, ये केवल शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। आत्मा इस तरीके से बच्चा नहीं होता, जवान नहीं बनता, बूढ़ा नहीं बनता, आत्मा तो ऐसे एक रस रहता है। ये शरीर का धर्म है, ये शरीर का भाव है, न आत्मना, ये आत्मा का नहीं है। उदाहरण किससे देते हैं, कलानाम इव चंद्रस्य, जैसे चंद्र की कलाएं हैं। ये कलानाम और चंद्रस्य, चंद्रमा की कला का मतलब ये है कि चंद्रमा उमावस के दिन दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, और फिर प्रतिपदा से थोड़ा दिखाई देने शुरू होता है, द्वितीय को थोड़ा बड़ा, ऐसे पूर्णिमा को फिर पूर्ण रूप से प्रकट होता है, इसको कहते हैं चंद्र की कलाएं। तो ये चंद्र की कला क्या है? ये चंद्र की कला, हमको चंद्र जितना दिखता है, ये जो चंद्र की कला है, जिससे कला से उसका जो प्रकाश दिखता है या नहीं दिखता है, ये उसकी कला में कालेन अव्यक्त वर्तमाना, वो समय के कारण उसके अंदर दिखता है और वैसे उसमें है नहीं। अब इसके लिए जो श्रीधर स्वामी ने इसका भाव लिखा है, वो ये लिखा है, पहले कला किसको कहते हैं? वो कहते हैं चंद्र जो है, चंद्रमा जो है, वो किसी एक राशि में रहता है, और अगर सूर्य भी उसी राशि में उस वक्त है तो फिर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जैसे उमावस के दिन है। फिर कहते हैं कि चंद्रमा को एक राशि में रहने में केवल 6 घड़ी लगती हैं, कुछ ऐसा है कि 4 घंटे संभवतः इतना समय ही एक राशि में रहता है, फिर दूसरी राशि में चला जाता है। लेकिन सूर्य जो है 13 दिन एक राशि में रहता है संभवतः। ज्योतिष, वो लिखा है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे सूर्य के राशि बदलने और चंद्र के राशि बदलने में, कि उनके जो स्पीड है, उनकी जो गति है, उसमें अंतर है। और ये सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा के ऊपर प्रतिबिंब होता है, तो एक समय में जब दोनों एक राशि में होते हैं तो चंद्रमा नहीं दिखता है, वो उमावस कहलाती है। उसके बाद 15वां अंश चंद्रमा, सूर्य के 15वें अंश का प्रकाश, 1/15 उतना प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, और हर तिथि के बाद वो बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा तक वो पूर्ण रूप से चंद्रमा पूरा दिखता है। तो ये चंद्रमा थोड़ा दिखता है, कभी थोड़ा दिखता है, फिर और बड़ा दिखता है, फिर पूरा दिखता है। तो चंद्रमा में ये जितना भी प्रकाश का परिवर्तन है, ये सूर्य के प्रकाश का उसके ऊपर जो प्रतिबिंबित होता है उसके कारण है। चंद्रमा जैसे है वैसे ही गोल का गोल है। और दो शब्द लिखे हैं जो हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने भी उसको हमारे पुस्तक में जो है लिखा है कि चंद्रमा जल प्रधान है और सूर्य तेज प्रधान है। तो चंद्रमा में जल का ज्यादा भाग है, जल का इतना है कि चंद्रमा शीतल है, उसकी किरणें शीतल है, और चंद्रमा से ही जो रस चूता है, रस जो नीचे आता है उससे औषधियां जो है, वैसे चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहते हैं। चंद्र जो है वनस्पति औषधि जो हरियाली सारी है उस सब का स्वामी है। तो ये जितनी भी हरियाली है, वृक्ष हैं, ये सब चंद्रमा के रस से, सोमो भूत्वा रसात्मकः, ये गीता का श्लोक है, सोमो भूत्वा रसात्मकः, चंद्रमा रस प्रदान है और सूर्य प्रकाश प्रदान है, तेज प्रदान है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर प्रतिबिंब होता है, उससे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और कम होती हैं। ऐसे शरीर छोटा बड़ा होता है लेकिन आत्मा में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा जैसा है वैसा रहता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा इससे ये मिलती है, और क्योंकि इस शिक्षा को कहते कहते दत्तात्रेय जी को अग्नि की और एक और शिक्षा याद आ गई, और उस शिक्षा के लिए लिखा है कि देह क्षण भंगुर है। ये देह परिवर्तन से जाती है और फिर एक दिन देह समाप्ति की ओर जाती है, शमशान में इसका अंत होता है, ये भस्मी हो जाती है, कि दफना दो अगर धरती में तो फिर इसको कीट पतंग खा जाते हैं। तो ये देह जो है इसकी क्षण भंगरता से क्या सीखा, जीवन में वैराग आना चाहिए। तो देह के क्षण भंगरता, देह के परिवर्तनशीलता से आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये अनुभूति बहुत ऊपर के स्तर की अनुभूति है। हम कई सालों से कृष्ण भावना में हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन शरीर उसकी परिवर्तन से कितना प्रभाव मानसिक होता है। ये बाहर का मोटा शरीर जो है इसको कहते हैं स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म सिरो शरीर है, तो उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है सभी इसको इसी को सब कुछ समझते हैं। लेकिन आत्मा जो है उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो एक रस सच्चित आनंद है, वो तो उसकी अनुभूति भी अद्भुत है। तो उसका जो धर्म है उसके धर्म की अनुभूति अभी तक, उसके धर्म की अभी तक हमारे को कोई अनुभूति ऐसी हो नहीं रही है कि उसके रस का अनुभूति हो जाए तो शरीर के इस परिवर्तन से प्रभाव कम हो। तो इससे सीखना क्या, शिक्षा क्या मिली, शिक्षा ये मिली कि शरीर परिवर्तनशील है और जो चीज़ परिवर्तनशील होती है, जिस चीज़ में तब्दीली आती है, जो चीज़ बदलती है और जो चीज़ जन्म लेती है उसको मरना भी पड़ता है। इसलिए इस शिक्षा से एक साधु पुरुष को वैरागवान होना चाहिए। वैरागवान होना चाहिए इसका मतलब है उसकी जो आसक्ति है, विशेष राग है, वो भगवान में होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के रास्ते में सावधान और गंभीर होकर भगवत भजन करना चाहिए। जो चीज़ स्थायी है उसको पकड़ के रखना चाहिए और जो चीज़ जाने वाली है उसको कितना भी पकड़ने का प्रयास करेंगे हाथ आने वाली नहीं है। तो उसके लिए अब देखिए, दुनिया सारी में सारी चिंता सबकी है केवल शरीर को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए शरीर को, लेकिन आत्मा के विषय में चिंतन नहीं है और उस विषय में चिंतन नहीं है इसलिए सारा संसार भयभीत है। और भय किसके लिए होता है, भय होता है असल में जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो बदलती है, वो तो जगह बदल जाएगी और बदल जाएगी, जो हमारी है कल हमारी नहीं रहेगी, तो उसके जाने का भय रहता है। इसलिए आत्मा, अगर हम अपने आप को अपनी पहचान आत्मा से समझते हैं तो वो तो कहीं जाने वाली है नहीं, वो तो सदा ही एक रस है, वो तो केवल भगवान की सेवा में संतुष्ट होती है। इसकी अगर अनुभूति हो जाए तो फिर हमेशा निर्भयता से जीवन में, तो वैरागवान जो होते हैं उनका भगवान में इतना राग हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि संसार के परिवर्तन की उनको कोई परवाह नहीं रहती है और उससे वो प्रभावित भी नहीं होते हैं। वो हर चीज़ भगवान से आई हुई समझते हैं और भगवान जैसे रखेंगे उस हाल में हम रहेंगे। हमें कोई प्रभुपाद जी को एक बार मेरे ख्याल में 71 की वार के समय में किसी ने पूछा था कि एक बम फेंकेगा अगर आपका शत्रु देश इस वक्त लड़ाई हो रही है, तो प्रभुपाद ने कहा बम मैं देखूंगा, कृष्ण बम के रूप में आ रहे हैं तो आने दीजिए, उसकी अगर इच्छा आने की होगी तो आएंगे हमारे लिए। तो हमारा दृष्टि किसके ऊपर है, आत्मा का जिसके संबंध है भगवान, तो उसके ऊपर दृष्टि है। ये शरीर के परिवर्तन वाले चीज़ें या संसार में जो परिवर्तन होता है उससे प्रभावित नहीं होता है। तो ये चंद्रमा से शिक्षा ली है। और वैसे हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य ने यहाँ एक श्लोक भगवत गीता का केवल उद्धृत किया है, न जायते मृद्य मृयते वा कदाचन, ये आत्मा की जो अमरता है उसके सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने बताया है कि जैसे भगवत गीता कहती है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, वो एक रस रहती है। वो उसकी समस्या सिर्फ ये है, इस वक्त हमको समझना चाहिए उसकी समस्या इस वक्त ये है कि बद्ध जीव है। बद्ध जीव है का मतलब है वो प्रकृति के तुन तीन गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ है और उसने गुणों के कारण ही सदसद योनि ले ली है, और जो सदसद योनि ले ली है अब वो शरीर के अनुरूप ही उसके अंदर गुण और लक्षण है, वैसे ही करेगा जैसे वो शरीर करता है। तो मुक्त स्तर के ऊपर आना, ये अगर ये सीखना चाहिए भक्त को, साधु को ये सीखना चाहिए कि हमको बद्ध अवस्था से कैसे निकला जाए, प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं उससे मुक्त कैसे हों। तब भगवत गीता के फिर इस श्लोक को याद करना चाहिए, अविविचारेण भक्ति योगेन स गुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर मुक्ति के स्तर पे आना है तो शुद्ध भक्ति के साधन को अपनाना है, और शुद्ध भक्ति का साधन भक्ति केवल भक्तों से मिलती है, जैसे जैसे जीवन जीवन से आता है। कभी भी भौतिक चीज जो जड़ चीज है वो चेतन नहीं हो सकती है, ऐसे भक्ति जो है वो केवल भक्ति से आती है। इसका मतलब भक्ति केवल भक्तों के संग से आती है। तो भक्तों का संग करके भक्ति में अग्रसर होने के लिए, भक्ति के साधन करने के लिए हमारे को बहुत गंभीर होना चाहिए। इस क्षण भंगर थोड़ी देर रहने वाले संसार के चकाचौंध को देखकर और उसके अंदर इतना प्रभावित हुए हैं कि हम अपनी पहचान को भूल के और पागल की तरह भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, जैसे सुखदेव गोस्वामी पहला ही दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज के प्रश्न जो सवाल है, प्रश्न पूछा है, उसकी प्रशंसा करके वरेयम ते प्रसन्न राजन, आपका प्रश्न बड़ा महान है कि आपने दूसरों के हित के लिए पूछा है, लेकिन आपने पूछा है इस संसार के लोग सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करके और कभी न टिकने वाले धन के पीछे लगे रहते हैं और रात को भोग में या सोने में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सा समय व्यर्थ करने के लिए साधन है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को जो भय से मुक्त होना चाहता है उसको तो भगवान ईश्वर हरि सर्वात्मा जो सबके हृदय में प्रेम करने वाला परमात्मा हमारा सुहृद बैठा है, उसके विषय में श्रोतव्यम कीर्तत्वम स्मृतव्यम यदिच्छति अभयम्। अगर इच्छा करता है कि मैं भयभीत न हूँ, मुझे डर न लगे, मैं जो है निर्भय हो जाऊं, तो फिर भगवान हरि का श्रवण, कथा का श्रवण करना चाहिए, नाम का कीर्तन करना चाहिए और मन से सदा उसके सुमरण में लगा रहना चाहिए। तो ये साधन जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक असल में हम आत्मा के हित का कार्य नहीं कर सकेंगे, और जो आत्मा के हित का कार्य नहीं करते हैं उसको कहते हैं कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस का धन है, दौलत है, लेकिन उसका सदुपयोग करके सुख नहीं ले रहा है। ऐसे हमारे को मानव जैसा दुर्लभ जन्म मिला है, जिसके नर के जन्म में नारायण को प्राप्त करना संभव है, भगवान को पाना संभव है, लेकिन भगवान को पाने वाले काम को हमने पीछे छोड़ दिया और संसार के छोटी मोटी चीजों के पीछे पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, तो इसको कृपण कहते हैं। गार्गी कहती है कृपण वो है दुर्लभ मानव जन्म मिलने के बाद भी आत्मा के उद्धार करके भगवत प्रेम की प्राप्ति न करे तो उसको कंजूस मानना चाहिए। बोला इसके विपरीत शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है इतना उदार है कि उसका सारा जीवन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ करे और किसी के घर में भोजन करके आ जाए। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानता है, इसका मतलब जो आत्म तत्व को जानता है, जो भगवत तत्व को जानता है, जो दोनों के संबंध को जानता है और उसके लिए साधन भी करता है, उसको पाने के लिए प्रयास भी करता है, तो उदारता होनी चाहिए। अब यहां जब क्षण भंगर शरीर के परिवर्तन और आत्मा की अमरता चंद्रमा की कलाओं से तुलना देकर अनुभव करने की बात करके दत्तात्रेय जी को अग्नि की एक और शिक्षा याद आ गई। इसको आचार्य गणों ने लिखा है सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन का मतलब है, सिंह का मतलब है शेर, अवलोकन का मतलब नजर। जब शेर चलता है जंगल में तो थोड़ा आगे जाके फिर पीछे गर्दन मोड़ के देखता है मैं कहां से आया हूं, पीछे क्या है। तो इसको कहते हैं सिंह अवलोकन। तो ऐसे कभी कभी महात्मा कोई प्रवचन करते, बात करते करते, कोई विषय कहते कहते दूसरे विषय में जाते हैं, और उसी से पहले विषय के विषय में कोई बात याद आती है तो उसको फिर प्रस्तुत करके पूरा करते हैं। तो इस न्याय को सिंह अवलोकन न्याय कहते हैं। तो जब क्षणभंगर शरीर की बात चंद्र की कलाओं से तुलना करके की तो उनको अग्नि की एक और शिक्षा याद आई। ये अग्नि की शिक्षा है, काले नोग वेगे न भूता नाम प्रभवा पायाओ नित्यापि न दृश्यते आत्मनो अग्ने यथार यथारिचिशाम अर्चिशाम। अब अग्नि की क्या बात है, अग्नि में जो लपटें निकलती हैं, जो शोला निकलता है, जैसे घर में बत्ती भी जलती है उसका शोला जलता है, जैसे दिया बत्ती जलाओ या दिए दीप जलाओ तो उसमें जो शोला निकलता है, जो लौ निकलती है, वो लौ क्षण क्षण में बदलती है, लेकिन हमको दिखती है कि ये लौ ऐसे ही चल रही है। अब एक लपट अग्नि की निकलती है वो खत्म हो गई, दूसरी का जन्म हुआ, पहली खत्म हो गई, तीसरी का जन्म हुआ, चौथी खत्म हो गई, तो वो एक के बाद एक जन्म लेती है, एक खत्म होती है, लेकिन वो लगती एक रस है जैसे ये एक ही जल रही, लेकिन अंत में जब बुझती है आग तब लगता है कि आग बुझ कैसे गई, बुझ इसके गई, इसके बाद दूसरी पैदा ही नहीं हुई। तो ये धारावाहिक अग्नि में से लपटें निकलती रहती हैं, दिए में से रोशनी की एक एक लौ निकलती और समापत, एक समापत होती है, दूसरी निकलती है और इतनी तेजी से निकलती है कि हमको लगती है कि ये एक रस जल रहा है। और उदाहरण किससे दिया है ऊपर दूसरा, ओघ वेगेना। ओघ वेगेना का मतलब बहुत तीव्र गति से चलने वाला जल। जैसे ये कहावत है कि हरिद्वार में गंगा के अंदर उसी जल में आप दूसरी बार नहा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि आप एक डुबकी लगाएंगे तब तक वो जल तो बह के चला जाएगा, दूसरा जल वहां आ जाएगा, वो जल वही तो नहीं रहेगा, वो जल इतना तेजी से जा रहा है हमको लगता है कि हम नहा रहे हैं गंगा में, लेकिन जिस पहले जल में हमने डुबकी लगाई वो जल तो कब का चला गया, अब तो दूसरे जल में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये प्रवाहशील जैसे पानी है वो तेजी से बह रहा है लेकिन लग रहा है कि एक रस जा रहा है। ये जो लौ अग्नि की है वो लगती है कि एक रस जल रही है लेकिन वो निकलती है खत्म होती है। ऐसे ही काले नहे, काले नहे का मतलब समय के प्रभाव से, ओघ वेगे न तेज प्रभाव से चलने वाला पानी, भूतानाम प्रभव, भूतानाम का मतलब प्राणियों का, पांच भूतों के शरीर वाले का, प्रभव का यहां अर्थ है जन्म लेना, प्रभव प्रलय, ये प्रभव का मतलब जन्म लेना और प्रलय का मतलब समाप्ति होना। तो ये प्रभव और प्रलय के जगह यहां लिखा है अपायो, अपाययो का मतलब समाप्ति होना, अपाययो समाप्त होना, जन्म से लेके समाप्ति तक नित्य हो, ये नित्य परिवर्तनशील है, जन्म से लेके मृत्यु तक ये शरीर रोज बदलता है लेकिन हम देखते नहीं है, रोज इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। ऐसे तो वैज्ञानिक कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि हमारे शरीर के जो जितने भी ये त्वचा के ऊपर जो चीजें हैं ये तो रोज एक हम हाथ धोते हैं, एक जाते हैं दूसरे आते हैं, पूरा शरीर रोज बदलता है लेकिन हम इसको देखते नहीं है, जैसे दिए की लौ को देखते हैं कि ये जल ही रही है लेकिन एक जलती है एक समाप्त होती है ये दिखाई नहीं आती। तो ये भूते न, ये जो भूता नाम प्रभवो अपायो, ये जो शरीर है जन्म लेने के से लेकर और अंतिम क्षण तक रोज नित्य अपि, नित्य अपि, नित्य इसमें परिवर्तन होता है लेकिन न दृश्यति, लेकिन देखने में नहीं आता है। आपने ऐसे भी कभी देखा है, हम अपने आप को रोज देखते हैं तो हमारे कैसे कोई परिवर्तन नहीं लगता है, लेकिन कभी 10 साल के बाद किसी पुराने मित्र से मिलते, अरे तुम्हारे में इतनी सारी परिवर्तन आ गया, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। कभी कभी लोग दूसरे लोग देख के हमको कहते हैं बदल गए हो, लेकिन हमको पता नहीं लगता है कि हम बदल गए, क्योंकि हम अपने आप को रोज देख रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उसका पता हमको तो लगता ही नहीं है, हम तो लगते जैसे हम थे वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये अग्नि से इस शरीर के क्षण क्षण में क्षीण होना और फिर नया होना, ये अग्नि से शिक्षा है। इसको वो गीता के इस श्लोक से भी समझ सकते हैं, जो नित्य बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत्र प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। शरीर के अंदर आत्मा तो ऐसे ही रहता है, लेकिन शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु की ओर चलता है, लेकिन आत्मा इसके अंदर नित्य रहता है। वो न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न मरता है। जो ऐसे शरीर के परिवर्तन को देख सकता है वो धीरजवान है, वो इस शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो यहाँ ये अग्नि से क्या शिक्षा ली है, फिर वही शिक्षा शरीरों के परिवर्तन के साथ, पानी के गुजरने के साथ, अग्नि के जलने के साथ, क्षण क्षण में जो परिवर्तन होता है, उससे महात्मा लोगों को कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ अपने पास आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने असल में श्रीधर स्वामी की टीका से ये शब्द लिखा है, वैराग्य सीखना चाहिए। उसको इस बात के ऊपर यकीन हो जाए कि बराबर ये सब तब्दीली रोज आ ही रही है, परिवर्तन रोज ही आ रहा है, तो फिर जो चीज स्थायी है उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए ना। ये माया से, मैं समझता हूं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो टीका है उसमें ऐसे लिखा है कि माया ने हमको संसार के अंदर इतना भुला दिया है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और हमारा जो स्वरूप है कि सदा भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उसको हम भूल गए हैं और परिवर्तन संसार के पीछे पड़ गए हैं। इसके लिए एक सामान्य भाषा में कहते हैं, सामान्य भाषा में ऐसे कहते हैं कि जो चीज़ टिकने वाली नहीं है उसको हम पकड़ के बैठे हैं, और जो चीज़ सदा हमारे साथ रहने वाली है उसको हम भूल गए हैं। हमारे साथ साथ सदा रहने वाला परमात्मा है, और हमारी अपनी आत्मा है जो हमारे साथ सदा रहेगी, और हमारे साथ कभी न रहने वाला न ये शरीर है, और न शरीर के साथ जो भी इसके साथ हमने मैं और मेरा करके उसके ऊपर स्वामित्व जताने शुरू कर दिया है, वो सब चीज़ें समय के साथ चली जाएंगी। जैसे हमारा बचपन चला गया, हमारी जवानी चली गई, ऐसे कई लोग हैं जिनका एक जगह जन्म हुआ वो स्थान जन्म का चला गया, दूसरी जगह चले गए, एक नौकरी थी वो चली गई, दूसरी नौकरी में चले गए, एक दुकान था चला गया दूसरे दुकान में आ गए। तो ये सब चीज़ें जाने वाली हैं, जो आज नहीं तो कल नहीं तो शरीर के साथ सब कुछ ही जाने वाला है। जो नहीं जाने वाला है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो जाने वाली है उसके ऊपर सारा जीवन निर्भर करके उसी के पीछे लगा रहना, ये बुद्धिमता नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो अवधूत की शिक्षा ये है कि साधु जो है उसको जो नित्य रहने वाली चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो आने जाने वाली चीज़ है उससे वैराग उत्पन्न हो जाना चाहिए। इस देखकर, ये देखकर वैराग उत्पन्न होना जाना चाहिए, और ये थोड़ी देर के लिए वैराग आता है। ऐसा कभी ऐसी परिस्थिति भी होती है, मृत्यु भी देखते हैं किसी को, तो उसको शमशान का वैराग कहते हैं, वो वैराग थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर माया का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि फिर वापस हम उसी काम में लग जाते हैं। फिर भी हम सावधान होकर अपने आत्म चिंतन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम चंद्रमा से शिक्षा ली, अग्नि से चौथा श्लोक की शिक्षा, अब रवि सूर्य से दो श्लोकों में शिक्षा क्या ली है इसका आज कथा में वर्णन करके फिर कल से कपोत की शिक्षा का शुभारंभ करेंगे, प्रयास ये करते हैं। तो ये हम 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं। गुणैर गुणान उपादते यथा कालम विमुंचन्ति नतेषु युज्यते योगीर गोभिर गायव गोपति। गोभीर गाव एव गोपति ही, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, आप इनका अर्थ समझें, कुछ अपने जो शब्द कोश है उसके अंदर वृद्धि कीजिए, वोकेबलरी बढ़ाइए। गोपति, गो यहां शब्द है सूर्य के किरण के लिए, सूर्य की किरण को गो कहते हैं, इंद्रियों को गो कहते हैं, पृथ्वी को भी गो कहते हैं और गाय को भी गो कहते हैं, लेकिन यहां इस प्रसंग में गो शब्द है गोभीर, इसका मतलब सूर्य की किरणें, और गा, गा शब्द है जल के लिए, पानी। इव, इस प्रकार, गा का मतलब पानी के सरोवर, पानी का जो भी खुला पानी आसमान के नीचे जहां भी पड़ा हो उसको गा कहते हैं। गोभीर गा एव गोपति, गोपति का मतलब अपने किरणों का स्वामी, ये सूर्य का नाम है, रवि ये प्रकाश, दिनेश इसका नाम है, दिन में जो दिन का ईश प्रकाश देने वाला रवि, तो इसके बहुत सारे सूर्य के नाम है, आदित्य, 12 नाम तो सूर्य के, सूर्य नमस्कार में सबको पता है, लेकिन ये उनसे अलग गोपति नाम है सूर्य का। अपनी किरणों से, किरणों का स्वामी सूर्य देव जैसे जल को क्या करता है, गुणैर गुणान उपादते, गुणैर का मतलब है ये गुणई और गुणान, ये है साधु के लिए, गुणैर गुणान उपादते, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के विषय को स्वीकार करता है, यथा कालम विमुंचते, और जब समय आता है उसको वापस करने का, कोई उससे मांगता है तो उसको दे देता है। नतेषु युज्यते योगी, योगी उसमें आकर्षित होके उसके साथ लग, उसके साथ बंधन में नहीं पड़ता है। बोला कैसे, गोभीर गायव गोपति ही, जैसे सूर्य करता है। अब सूर्य का काम क्या है, गर्मी की मौसम में सूर्य अपने किरणों से बड़े बड़े सरोवरों के, नदी के, समुन्द्र के जल को बाप बना के वहां से उठा लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस जल को सूर्य अपना मान के, मेरा है, मैं इसको अपने पास रख दूं, ऐसा उसकी इच्छा नहीं है, और उस जल से वो बिल्कुल भी बंध नहीं जाता है। जब वर्षा की ऋतु आती है तो उसी जल को वापस वर्षा के इस धरती को वापस देता है जहां से उसने लिया था, एक समय में लेता है दूसरे समय में देता है। भागवत में अन्य स्थानों में सूर्य की शिक्षा को असल में राजा के साथ तुलना दी गई है, राजा को प्रजा से कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो धन लेता है वो राजा के अपने भोग के लिए नहीं है, अपना घर बंगला बनाने के लिए नहीं है, अपने ऐश आराम के लिए नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो रोड बनाना है, बिजली का, बिजली देनी है और सुविधाएं, वापस उसी धन को वापस जनता को लौटा कर देता है। तो लेना और देना, जैसे सूर्य जल को देता है, एक समय पे लेता है दूसरे समय पे देता है, जैसे राजा को टैक्स लेके फिर वापस देना चाहिए और प्रजा की सेवा में लगाना चाहिए, उसका उसका स्वामी बनकर उसको भोग नहीं करना चाहिए, जैसे सूर्य जल को भोगता नहीं है और न ही उससे बंध जाता है और आवश्यकता के समय उसको वापस कर देता है, ऐसे साधु को महात्माओं को भी बहुत सी चीज़ें समय के ऊपर आते जाते मिलती रहती हैं, तो इंद्रियों से कुछ चीज़ें वो ग्रहण करते हैं। मानो हम आधुनिक ऐसे देखे हैं कि कोई बहुत सी चीज़ें जो जैसे हम प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, तो जहाँ भी जाते थे तो लोग उनको कुछ न कुछ भेंट देते थे, धन देते थे, कुछ और चीज़ें देते थे, तो वो दूसरे दिन ही कहते थे कि ये धन जो है ये एक अकाउंट बना रखा है, उसका नाम है MVT मायापुर वृंदावन ट्रस्ट, ये धन उसमें डाल दीजिए, ये मेरे को जो मिला है ये भगवान के नाम पे मिला है, ये दो मंदिर जो हमारे वृंदावन और मायापुर वाले, हमारे जाने के बाद कभी कोई ऐसा समय आए जब मंदिरों को चलाना मुश्किल हो जाए तो इस मेरे धन से इन मंदिरों के चलाने के कार्य को हमेशा चलाते रहना। तो ये प्रभुपाद जी ने उस धन को तत्काल दूसरे दिन ही उसको बैंक में डालते थे। और किसी ने कोई उपहार दे दिया, आज एक घड़ी दे दी, अभी नहीं तो हजारों घड़ियां मिली होंगी प्रभु को, प्रभुपाद जी को, और दूसरे दिन कोई और भक्त आया उसको वो घड़ी दे दी, एक शाल मिली दूसरे को, एक दिन एक को मिली, एक से मिली दूसरे दिन दूसरे को दे दिया। तो साधु के पास जो चीज़ आता है उसको वो बंधन में पड़ के मेरा करके कोई बिजनेस कारोबार या दुकानदारी नहीं करता है, उसको फिर जो आवश्यक समय के ऊपर दूसरा कोई ज़रूरतमंद है उसको दे देता है। जैसे अब हम आप देखिए कि जो लोग श्री रूप गोस्वामी ने तो इसको लिखा है ददाति प्रण प्रतिग्रणंती, ये तो भक्तों के बीच में भी ऐसे होता है। सामान्य रूप से प्रभुपाद जी ने कहा है अब हम लोगों से जाके दान मांगते हैं कभी, तो वो दान हमारे को देते हैं वो हमारे भोग के लिए नहीं है, हम उसको फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में जनता को बांट रहे। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों से ले रहे हैं वो हमारे अपने भोग के लिए नहीं है, जैसे पानी सूर्य लेता है उसके अपने लिए नहीं है, वो समय आने के ऊपर वापस आपको ही लौटा कर देता है, और उस समय आपको आवश्यकता होती है तब आपको उसकी ज़रूरत होती है तब आपको वापस लौटा के देता है। तो साधु संत को ऐसे कोई चीज़ मिल जाए उसका स्वामित्व बनने का न करे, उसके बंधन में न पड़े और उसको वापस लौटा दे। प्रभुपाद के शिष्य ने तो लिखा है कि जो कुछ भी कृष्ण भावना भावित भक्त जो मंदिरों में रह रहे हैं, मंदिरों के अंदर जिनकी पालन पोषण हो रहा है, भगवान के ही प्रसाद खा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनको जो भी चीज़ मिले जिसका उनको अधिपति आज बनाया हुआ है, मंदिर का अध्यक्ष है अथवा मंदिर के अंदर कोई पद के ऊपर है, तो कभी उसका मालिक अपने आप को नहीं मानना चाहिए। वो सब कुछ जो कुछ हमको मिला है भगवान की कृपा से मिला है, वो कृष्ण भावना के कार्यों में लगाना चाहिए। जो उनको मिलता है वो भगवान की सेवा के कार्यों में लगाने चाहिए, ये हमारे को सूर्य से सीखना चाहिए। तो ये सूर्य से ये एक शिक्षा जो है विशेष रूप से भक्तों को सीखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जाते हैं भक्त प्रचार करने, एक समय पे लोग उनको देते हैं, दूसरे समय पे उनको वापस उनको किसी प्रकार से देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए, जैसे कहते हैं किसी ने धन दिया उससे प्रभुपाद ने पुस्तक छापा और पुस्तक को फिर वापस समाज के अंदर दे दिया, जिससे पुस्तक पढ़ के वो लोग फिर भगवत भाव कृष्ण भावना में भावित होंगे और कुछ सेवा के कार्य करेंगे। ऐसे परस्पर लेके उसका मालिक न बने, इतने सारे मंदिर बनाए शिला प्रभुपाद ने, किसी एक मंदिर के ऊपर अपना नाम नहीं रखा, भगवान के मंदिर है, लोगों ने भगवान के लिए दान दिया है, मंदिर का नाम रास बिहारी है, मंदिर का नाम कृष्ण बलराम मंदिर है, मंदिर का नाम राधा पार्थासारथी मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर है, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर है। तो जिसके लिए दान आया उसी की सेवा में लगा लिया, अपने को सेवक के रूप में हमेशा रखा। तो ये सूर्य से एक प्रकार की सेवा की शिक्षा सीखनी चाहिए। अब सूर्य से दूसरी कौन सी शिक्षा है वो 51 श्लोक में हम पढ़ते हैं और फिर आज की कथा को विराम देते हैं। बुध्यते बुध्यते स्वयन भेदेन व्यक्ति स्त एव तदगतः लक्ष्यते स्थूलः मति भी आत्मा चावस्थितो अर्कवत। अर्कवत, अर्क कहते हैं सूर्य को, अर्क अर्को उदय। भागवत के लिए श्रीमद् भागवत में है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने धाम गए तो भागवत रूपी अर्क का उदय हुआ। अर्क, वहां शब्द भागवत को अर्क से तुलना दी गई है। अर्का मतलब सूर्य, जो प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है। ऐसे अधर्म और अंधकार और अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण है सूर्य समान। वहां भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य चैतन्य सूर्य से तुलना दी गई है, और भागवत को भी अर्को उदय है सूर्य से तुलना दी गई है। इसका मतलब जहाँ भागवत का श्रवण वर्णन होता है, हरि कथा होती है भागवत से, वहाँ हमेशा प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, वहाँ माया कभी नहीं आ सकती है। तो अर्क, वहाँ अर्को उदय, अर्क उदय का मतलब सूर्य का उदय हुआ। अर्कवत, अर्कवत मतलब सूर्य के समान। तो सूर्य के समान यहाँ तुलना क्या दिया के दी गई है, बुध्यते स्वयन भेदेन व्यक्ति स्त एव तदगत। इसका मतलब है सूर्य तो एक है, और सूर्य का जब हम कभी भी सूर्य का नाम आता है तो तत्काल हमको भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण के वचन याद आने चाहिए कि सूर्य को भगवान ने पहले भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो सूर्य ये केवल रोशनी का प्रकाश नहीं देता है, सूर्य ने भगवत गीता के ज्ञान का प्रकाश अपने पुत्र विवस्वान सूर्य का नाम है, उसने अपने पुत्र विवस्वत मनु को दिया, और विवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु हुआ जिसने धरती के ऊपर अयोध्या की स्थापना की। तब से राज ऋषियों में इस भगवत गीता का भी ज्ञान इस प्रकार ही आ रहा है। तो ये सूर्य बुध्यते, ये बुद्धि की बात है, स्वयं भेदेन व्यक्ति स्त एव तदगत लक्षते स्थूलमति भी। फिर स्थूलमति का अर्थ समझना चाहिए, स्थूलमति का मतलब जिसकी बुद्धि जड़ है, स्थूलमति का मतलब मोटी बुद्धि वाला जो है। तो मोटी बुद्धि वाले का क्या करता है, मोटी बुद्धि वाले के लिए आत्मा च अवस्थितो। अब इसका भाव यह है कि सूर्य आकाश में एक है, अगर आपके पास 100 आईने हैं, 100 मिरर हैं, 100 दर्शनी हैं, और 1000 पानी के बर्तन हैं, या 1,00,000 तेल के बर्तन छोटे छोटे हैं, उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, और जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा वो कहीं छोटा लगेगा, कहीं टेढ़ा लगेगा, और कहीं जो है हिलता हुआ नजर आएगा, तो ये उसके अंदर भेद नजर आता है। भेदेन व्यक्ति, व्यक्ति इसका का मतलब जब वो प्रतिबिंब होता है तो उसमें भेद नजर आता है, लेकिन वो स्थूल बुद्धि वाला समझता है कि ये भेद है। सूर्य स्वयं में तो कोई भेद नहीं है, सूर्य तो आकाश में जैसा है वैसा है, लेकिन जब वो किसी पानी के ऊपर तेल में आईने में प्रतिबिंबित होता है तो उसके प्रतिबिंब में भेद नजर आता है। ऐसे ही आत्मा जो है सूर्य की समान एक जैसा है, लेकिन वो जब किसी शरीर में जाता है तो वो शरीर के भेद को हम बाहर से देखते हैं, उसके अंदर आत्मा का दर्शन नहीं करते हैं। तो कम बुद्धि वाले ऐसे समझते हैं कि अलग अलग शरीर जो हैं ये अलग हैं, जैसे प्रतिबिंब अलग लगता है। तो शरीरों के अंदर अलग अलग शरीर दिखते हैं, कभी दिखता है ये बूढ़ा आदमी है, मोटा आदमी है, पतला आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, ये रशियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये तो बाहर प्रतिबिंब शरीर से हो रहा है, लेकिन आत्मा तो न स्त्री है, न पुरुष है, न मोटा है, न पतला है। ये जड़ भरत ने कहा था, वो एक याद आ गया जड़ भरत, हमारे को भी सिंह 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 अवलोकन के न्याय के अनुसार कि अग्नि जैसे कभी छिन्न और कभी स्पष्ट रहती है, जड़ भरत इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी हमेशा छिन्न ढके हुए रहे, न तो वो अपने घर में बोले, न ही देवी के सामने मारने के लिए गए, वहां उसको बोले नहीं। लेकिन योग्य पुरुष जब महाराज रघुगण मिले तो उनको बड़ा उत्तम उपदेश दिया। तो कभी तो छो हमेशा ढके हुए रहे, महात्मा थे लेकिन पागल की तरह रहे। लेकिन जब उनसे योग्य पुरुष मिल गया रघुगण जैसा, जो जा रहा था गंगा सागर पे संतों का संग करने के लिए, उसको अद्भुत उपदेश दिया। ऐसे सुखदेव महाराज पागल जैसे दिख रहे थे, लोग उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन परीक्षित की सभा के अंदर सब ऋषियों के बीच में उसको जब महान सिंहासन पे बिठाया तो उन्होंने भागवत का प्रवचन करके स्पष्ट हो गए। तो छिन्न और प्रविष्ट वो जो अग्नि वाला वो बात याद आई दोबारा। तो यहां लिखा है, जैसे यहां लिखा है कि आत्मा को कोई ऐसी उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है। ये सारी उपाधियां, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं इस देश का हूं, मैं उस देश का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं, मैं इस मजहब का हूं, मैं उस मजहब का हूं, ये सारे हैं उपाधियां। आत्मा की ऐसी कोई उपाधि नहीं है, आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा की केवल एक ही उपाधि है, वो भगवान का नित्य दास है। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ये भक्ति का परिभाषा है कि सारे उपाधियों से विशेष रूप से मुक्त हो, तत्प्रत्वेन और फिर निर्मलेन, और निर्मल होकर भगवान ऋषिकेश की इंद्रियों से सेवा करनी चाहिए। और फिर लिखा है स्थूल मति भी, का मतलब है जड़ मति वाला है, जिसकी बुद्धि जिसको नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है कि जड़ बुद्धि से कभी कुत्ता जाता हुआ किसी बहुत अच्छी रखी हुई पेंटिंग के ऊपर, बहुत अच्छा बहुमूल्य कोई चित्र है, उसके ऊपर पेशाब कर देता है, उसको उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ही हमने देखा है इस प्रकार से इस संसार के अंदर सारे लोग बड़े बड़े देशों के में रहने वाले अपने आप को एक दूसरे से केवल लड़ाई में लगे हुए हैं। कोई कहता है पूंजीवादी हूँ, कोई कहता है साम्यवादी हूँ, कोई अमेरिकन है, कोई रशियन है। अभी तो आजकल चाइना और रशिया के बीच में जैसे मतभेद चल रहा है, ये सब जड़ बुद्धि की बात है। अगर आत्मा के स्तर के ऊपर सोचें तो इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। जैसे सूर्य कहीं भी प्रतिबिंबित होने से और गंदी जगह से, एक और सूर्य से शिक्षा जो यहां नहीं दी गई है, वो शिक्षा ये है कि सूर्य गंदे से गंदे स्थान के ऊपर से गंद को साफ कर देता है, लेकिन सूर्य उस गंद से गंदा नहीं होता। कितना कचरा, गंदी नालियां, पानी पड़ा हुआ, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सभी साफ हो जाती हैं। तो सूर्य ऐसे भी करता है, सूर्य परोपकार भी करता है, सूर्य नेम के ऊपर सदा रहता है, रोज टाइम से उगता है, कभी छुट्टी नहीं करता है। ये बहुत सी और शिक्षाएं भी सूर्य के अंदर से लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ आगे आत्मा का शब्द लिखा है, तो यहां जो आत्मा शब्द है, प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य लिखते हैं, ये आत्मा शब्द परम पुरुष भगवान के लिए है। जैसे हम शरीरों के अंदर आत्मा एक है, फिर भी शरीरों को अलग रूप रंग से पहचानते, ये काला आया, ये गोरा आया, और ये लाल शर्ट वाला है कहें, ये काली शर्ट वाला है, तो आदमी तो न लाल है न काला है, आदमी तो अलग है, लेकिन हम उसको केवल उसके कपड़ों से पहचाने कि ये पैंट वाला आ रहा है, ये धोती वाला आ रहा है। तो ये उनको बाहर की पहचान जैसे आदमी करते हैं, वैसे ही हम भगवान के विषय में भी अपने भौतिक मन से अलग अलग मन घड़त उसका जो है कुछ अपने दिमाग में चित्र बनाते हैं। अरे भगवान कैसे है, भगवान निराकार होगा, नहीं भगवान को जाना नहीं जा सकता है, वो अचिंत्य है, अब जैसे सूर्य है ऊपर, सूर्य का प्रकाश है ऊपर, बीच में बादल है, सूर्य नजर नहीं आता है, अब बादल बने कैसे, बादल सूर्य से बने लेकिन सूर्य को ढक दिया, तो असल में सूर्य को ढका नहीं है। अगर आप जहाज में बादलों से ऊपर जाएंगे तो सूर्य नजर आता है, लेकिन जड़ बुद्धि वाले कहेंगे आज सूर्य निकला ही नहीं बादलों से, अरे बादल किसने बनाए, बादल सूर्य ने बनाए थे। तो ऐसे भगवान की ही ये माया है, उससे भगवान ढके हुए हैं। जो माया से मुक्त होते हैं वो भगवान को देख सकते हैं, जो नहीं मुक्त होते हैं वो माया को ही देखते हैं। तो हमारे दिमाग जो है जड़ हो गया है, इसलिए ना हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, आत्मा का अनुभूति कर सकते हैं, ना ही परमात्मा के विषय में हमारी बुद्धि जाती है, क्यों उसके ऊपर जो इस वक्त अलग अलग उपाधियों का पर्दा चढ़ा हुआ है। जीवेर कालेन साधनकाम जगत आसी मधुर नाम अविद्या तिमरह तपन रूपे हृदय गगने ब्रजे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ लिखा है यहाँ, तो आज का समय पूरा हो गया, इस श्लोक को कल पढ़ के फिर कपोत की शिक्षा, वो बहुत भारी शिक्षा है, असल में हमारे अपने घर में वो शिक्षा आ रही है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। यहाँ वाणी को विराम देते हैं, ये श्लोक जो है इसके भावार्थ को कल फिर एक बार पढ़ेंगे। धन्यवाद, हरे कृष्णा। मैं टाइम को देखा, समय हो गया। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? वरी छा खी आए जन्मदिन, हैप्पी जन्म, हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई कोई प्रश्न है? हाँ जी, धन्यवाद।
जो हम पिछले श्लोक पढ़ रहे थे उसमें वही आया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। भगवान भी भगवद्गीता पहला ज्ञान यही देते हैं, बट हम इतनी सारी सीखे सुनते जा रहे हैं, जैसे आपने बोला ये रियलाइज करना बहुत मुश्किल है, तो किस हद तक हमने रियलाइज किया है, इसका कोई मापदंड है, कैसे हम कहाँ तक बढ़ रहे हैं, या बेसिक समझ नहीं आ रही कुछ भी, वही के वही खड़े हैं, कैसे पता लगेगा?
अनुभव जो है ये व्यक्तिगत का है, और बहुत समय के बाद अनुभव होता है। सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है, अनुभव करना और उससे ज्ञान और विज्ञान। अनुभूति जो है बहुत भारी, ये अनुभूति अपने आप एक उम्र के साथ, ये सब चीज़ें जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल जब अप्लाई करेंगे तब इसकी अनुभूति होगी। तो अब ये देख रहे हैं कि शरीर, वाकई मानते हैं कि शरीर जाने वाला है, लेकिन कोई इस अनुभूति से संतुष्ट नहीं है, और ये अनुभूति होनी कि भगवान ही, भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। सुनते हैं, समझते हैं, कर भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाना, इसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाना और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल देना, उतना आगे बढ़ने के लिए अनुभूति सबको इतनी जल्दी नहीं होती है। जिनको होती है वो उसके अंदर से थोड़ा सा त्याग और वैराग नजर आता है। जितनी मात्रा में हमारे जीवन में त्याग और वैराग का जो है उदय होता है, उतनी मात्रा में हमारी थोड़ी सी अनुभूति, समझ लो के जीवन में थोड़ी सी अनुभूति हो रही है। को ये दो ही चीजें हैं, अभ्यास और वैराग। हमारा अभ्यास कितना तीव्र है और हमारा वैराग कितनी मात्रा में हो रहा है, उतनी मात्रा में हमारी अनुभूति हो रही है। अभ्यास है न तो कौन थे वैरागे न से गृहते, क्योंकि हमारे को ये मन है जो अनुभूति करने में बाधा डालता है। कई जन्मों के मन के अंदर जो आप इम्प्रेशन पड़े हैं, जो मन के अंदर वासनाएं पड़ी हैं, वो कहती हैं अरे क्या करना है, ये करना, ये करके देखें बाद में कर लेंगे। तो मन को वश में करने के लिए दो बातें जो है, अभ्यास और वैराग, ये हमारे कितना हमारा अभ्यास तीव्र है, कितना हमारा अभ्यास सटीक है, कितना हमारा अभ्यास अच्छा है। जैसे नाम सुमरण का अभ्यास है, शास्त्र पढ़ने का अभ्यास है, साधु संघ का अभ्यास है, भागवत के अध्ययन का अभ्यास है, और कितना उसके साथ साथ हमारे अंदर वैराग वृत्ति का उत्पन्न हुआ है। तो वैसे चेतना महाप्रभु के लिए कहते हैं निज वैराग विद्या निज भक्ति योग, और चेतना महाप्रभु तो वैराग विद्या ही सिखाने के लिए आए थे। तो हमारे अंदर कितना वैराग उत्पन्न हुआ है, कितनी चीजों को हम अपने साथ कम उठाना चाहते हैं, हम अपने साथ कितना जो है कम से कम में अपने निर्वाह करना करने के ऊपर जो है, जैसे सादा जीवन, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा सादा जीवन उत्तम विचार, तो हम कितना जीवन में सादा होने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक अनुभूति के स्तर की बात है कि हम कितना जीवन में सिंपल सादा हो रहे हैं, कितना हम जीवन में थोड़ा सा त्याग और वैराग कर रहे हैं, कितना जीवन में परोपकार का कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, कितना हमारा साधन भजन में हम सीरियस हैं, ये सब हमारे नापदंड है जिससे पता लगेगा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है क्या?
हरे कृष्णा।
हाँ विष्णु जी,
शुद्ध शुद्ध तत्व प्रभु जी पूछ रहे हैं कुछ
विष्णु। अच्छा क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं शुद्ध तत्व जी? धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए।
एक इसमें प्रभुपाद जी के शिष्य ने उदाहरण दिया है कि जैसे वो कुत्ता है, उसको वो पेंटिंग पर पेशाब कर देता है, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता कि कितनी वैल्यू है। तो इसी तरह जैसे एक बच्चा होता है, उसके हाथ में हम 2000 का नोट दें, तो उसको अगर 1 रुपए की टॉफी दें तो वो 2000 के नोट की उसको वैल्यू नहीं पता होती, वो एकदम 2000 का नोट छोड़ के वो 1 रुपए की टॉफी पकड़ लेगा। इसी तरह जो माया है वो हमें इस तरह जड़ बुद्धि कर देती है, तो वो हमें नहीं पता लगता कि 2000 की वैल्यू क्या है, तो हम जो है वो माया के लॉलीपॉप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस माया की मूर्खता से हम कैसे निकले, हमारी जो बुद्धि है वो जड़ बुद्धि हो जाती है।
आपने 2-3 उदाहरण भी दे दिए। ऐसे ही मानव जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ पेंटिंग की तरह है, लेकिन कुत्ते की तरह हम इसको इसका महत्व नहीं जानते हैं और इसको थोड़ी तुच्छ चीजों के लिए बेकार में गंवा देते हैं। तो ये जड़ बुद्धि से हमको कैसे ऊपर उठना चाहिए, बुद्धि बुद्धिमानों के संग में बैठना चाहिए। तो जैसे संग में बैठेंगे उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो थोड़ी सी जड़ बुद्धि जो है वो तेज हो जाएगी, और वैसे भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान बुद्धि योग देंगे तो जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनमाम उपयान्ति ते। तो ऐसे अगर हम भगवत भक्ति के रास्ते में चलेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे इस जड़ बुद्धि से मुक्त होके, क्षणभंगर चीजों को तुच्छ समझ कर नित्य शाश्वत भगवान के भक्ति को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेंगे। लेकिन इसके लिए अच्छे संग की जरूरत है। आपके प्रश्न का उत्तर है अच्छा संग, बुद्धिमानों का संग करेंगे तो जड़ बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, श्रील प्रभुपाद।